ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में कोविड-19 के कारण यात्रा प्रतिबंध और सामाजिक दूरी के चलते पार्टनर वीजा आवेदकों के लिए अधिक देरी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन इंस्टीट्यूट के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में दर्ज किए गए पार्टनर वीजा में से केवल आधों को ही मंजूरी दी गई थी। AHWC इमिग्रेशन लॉयर की प्रमुख वकील और माइग्रेशन एजेंट मैगी टैफ का कहना है कि सब क्लास 309 के अंदर ऑफशोर पार्टनर वीजा के लिए प्रोसेसिंग समय में कोविड-19 के कारण खासी देरी हो रही है। प्रतीक्षा का समय वर्तमान के औसत 18 महीने से भी काफी अधिक हो रहा है।
Even before the COVID period, they were taking an extraordinarily long amount of time. But since the COVID period, it almost seems as if they have just suspended processing. If you look at the department's website, they say that the offshore partner visa should be processed in between 21 to 28 months. But in many, many cases, that is being exceeded considerably in our experience.
ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन इंस्टीट्यूट के राष्ट्रीय निदेशक जॉन हॉरिगन का कहना है कि इस वित्तीय वर्ष में पार्टनर वीजा सभी आवेदनों में से लगभग आधे को मिला है।
The minister has stated that this financial year there were only about 40,000 partner visas granted, stage one. So if the application rate is about 85,000 and they're only processing 40,000 finalisation, that means you've already got over a two-year wait period of applications in the pipeline already.
टैफ का कहना है कि विसंगति और वीजा परिणामों में पारदर्शिता की कमी के कारण उनके क्लाइंट्स ऑस्ट्रेलिया या विदेश में अपने पार्टनर से मिल नहीं पा रहे और इससे उनमें तनाव और चिंता बढ़ गई है। हॉरिगन के अनुसार वैसे ऑफशोर पार्टनर वीजा एप्लीकेंट्स अभी भी देश में प्रवेश कर सकते हैं। वो ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स कमिश्नर से परमिशन लेकर ऑस्ट्रेलियन नागरिक या स्थायी निवासी के साथी के रूप में ऑस्ट्रेलिया आने के लिए टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
The problems start to arise in relation to de facto couples. The Australian Border Force Commissioner is approving those who have provided a tremendous amount of paperwork to show that they are in a de facto relationship. Those who have travelled backwards and forwards to Australia over a period of 1 or 2 or 3 years obviously can also show that evidence that they've got some sort of connection with Australia and with the Australian partner. For those who have never been here to Australia, it's going to come down to the level of documentation they have.
हॉरिगन और टैफ दोनों का कहना है कि भावी विवाह वीजा धारकों यानी प्रोस्पेक्टिव मैरिज वीजा वालों को कोविड-19 के दौरान यात्रा की छूट मिलने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जैसे भले ही उनके पास वीजा है लेकिन उनके वीजा समाप्ति की अवधि भी खत्म हो जाएगी। टैफ को चिंता है कि जिन लोगों को पहले से ही एक मंगेतर वीजा प्रदान किया गया था उन्हें यात्रा के प्रतिबंध हटा दिए जाने के बाद पूरी आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन हॉरिगन को लगता है कि शायद ये मुश्किल नहीं होगा।
Say before the bans are lifted, matter of just approaching the department on the other end of this and getting the department to re-evidence the visa. We don't know exactly what all the processes will be involved, but I think in many cases the department will probably just simply reissue the visas. In some cases they may have to provide a new notice of intention to marry.
अब ये ऑनलाइन पार्टनर वीजा आवेदकों के लिए कोई आसान काम नहीं है। पेरू में जन्मे लुसियानो और उनके ऑस्ट्रेलियन साथी ड्रू ने 5 साल पहले अपने साथी के वीजा आवेदन को दर्ज किया। ड्रू अपना अनुभव बताते हैं।
People think it's just filling out 2 pages is actually a very lengthy process, and they can look into all different avenues about what side of the bed you sleep on, what toothbrush the person may use, do you have letters. They can look into SMS, they can look into phone call history, they can look into absolutely anything and everything that you can imagine.
हॉरिगन का कहना है कि एक सफल वीजा आवेदन ये भी बताता है कि आप अपने रिश्ते के बारे में कितनी अच्छी तरह से बताते हैं। पार्टनर वीजा आवेदन दर्ज होने के बाद अन्य दस्तावेजों जैसे कि पुलिस प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य परीक्षाएं भी आवश्यक हैं। टाफ का कहना है कि दस्तावेजों का आयोजन करना यूं भी हमेशा मुश्किल होता है और कोविड-19 के दौरान उन आवेदकों के लिए तो खास तौर पर जिन्हें अपने देश के बाहर बायोमेट्रिक डेटा की व्यवस्था करनी है.
Who, for example, are living in Nepal and have had to get themselves to New Delhi to have fingerprints and things done.
ड्रू की सलाह है कि पार्टनर वीजा आवेदकों को शुरू से ही सही ढंग से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने चाहिए. टाफ के अनुसार गृह मंत्रालय उन पार्टनर वीजा आवेदकों को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब नहीं देता है जो आवेदन अभी प्रोसेसिंग टाइम के बीच में होते हैं.
So currently, say, if your processing time has been quoted as 21 to 28 months, the Department of Immigration would not respond to a query before the end of that 28 months. So it's really difficult for clients and for ourselves to know exactly where an application is before that period because we just cannot get any information from the Department of Immigration.
तो इसलिए टाफ और हॉरिगन दोनों सलाह देते हैं कि सबसे अच्छी बात यह है कि इस बीच आप अपने सहायक डॉक्यूमेंट्स को जमा कराते रहें. टैफ ने यह भी सलाह दी कि पार्टनर वीज़ा एप्लीकेंट्स को अपने डिफेक्टो रिलेशनशिप राज्यों और टेरिटरीज जहाँ जहाँ भी संभव हो वहाँ रजिस्टर करना चाहिए ताकि उनके वीज़ा के दावे की लिए संभावना बढ़ जाए.
They should go ahead and try to register the relationship because only one person needs to be a resident in the state or territory to actually register that relationship.
इस बीच लुसियानो अपने ब्रिजिंग वीजा पर शेफ के रूप में काम कर सकते हैं और उनका कहना है कि वो सकारात्मक हैं कि उन्हें अंततः अपना वीजा मिल जाएगा. SBS की चार भाग की डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला हु गेट्स टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, इस पर आप लुसियानो और ड्रू के साथ अन्य प्रवासियों और परिवारों की एक भावात्मक वीजा यात्रा देख सकते हैं. ये श्रृंखला बुधवार 1 जुलाई को रात 8:30 बजे से SBS टीवी पर शुरू हो चुकी है. ध्यान दें कि इस अंश में दी गई सलाह केवल सामान्य सलाह है और सभी परिस्थितियों पर लागू नहीं होती है. यदि आप अपनी वीज़ा स्थिति के बारे में चिंतित हैं तो सबसे अच्छा होगा कि आप कानूनी सलाह लें.